नारायण 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 आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयोसा वनुविन्दते। एक बड़ी सुंदर श्रुति है, तद्विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। हम दुनिया को जानते हैं लेकिन अपने को छोड़कर। जब हम अपने को जानना चाहते हैं तो अपने को जानने का उपाय क्या है? दुनिया को जानने के बहुत सारे उपाय हैं। हमारे पास पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, एक मन है। परांच खाणे वितरणत स्वयंभू तस्मात परांग पश्यति नान्तरात्मा। ब्रह्मा जी ने पांच ज्ञानेन्द्रियां बनाई। ये ज्ञानेन्द्रियां बाहर के पदार्थों को जान लेती हैं, लेकिन अंतरात्मा आत्म तत्व उसको जानने का सामर्थ्य इंद्रियों में नहीं है। आंख जब बाहर खोलती हैं तो बाहर के पदार्थ मालूम पड़ते हैं, आत्मा मालूम नहीं पड़ती। कान से शब्द मालूम पड़ता है, शब्द का आश्रय मालूम पड़ता है, लेकिन आत्म तत्व मालूम नहीं पड़ता है। इसी प्रकार नासिका से, त्वचा से, रसनेन्द्रिय से बाहर के पदार्थ मालूम पड़ते हैं लेकिन आत्म तत्व मालूम नहीं पड़ता है। और हम संपूर्ण जीवन इन पांच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा बाहर के पदार्थों को जानने में बिता देते हैं। और ये पांचों इंद्रियां हमारे अंतर्मन में इन भौतिक पदार्थों की संवेदनाएं निर्मित करती रहती हैं। हमारे मन में ये पांचों इंद्रियां ज्ञान को पैदा करती रहती हैं और उसके बाद फिर वो ज्ञान हमारे चित्त में अनेकों प्रकार की वासनाओं का संकलन करता है। जानो और जानो, ये दुनिया में जिसको हम भोग कहते हैं ये ज्ञानात्मक है। सुख दुख साक्षात्कारो नाम भोगा, भोग ज्ञानात्मक है। आप भोजन करते हैं ये ज्ञानात्मक है, स्वाद ज्ञानात्मक है, आपको अच्छा मालूम पड़ा, ये ज्ञानात्मक है। आंख से किसी चीज को आपने देखा वो बहुत अच्छी लगी, ये ज्ञानात्मक है। कान से किसी को सुना बहुत अच्छा लगा, वो ज्ञानात्मक है। हम और चाहते हैं, और ज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं। और ये और हमारी वासनाएं बढ़ती जाती हैं और इस अनंत श्रृंखला का कोई अंत नहीं है। बाहर के पदार्थों को जानने का कोई अंत नहीं है। आप बाहर कितने पदार्थों को जानने के बाद आप सोचेंगे कि बस अब बहुत हो गया। खाने से खाना कम नहीं होता और बढ़ता जाता है, बोलने से बोलना कम नहीं होता और बोलना बढ़ता जाता है, सुनने से सुनना कम नहीं होता और सुनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ये संसार का स्वभाव है, करने से करना बढ़ता जाता है, वासना से वासना बढ़ती जाती है, क्रोध करने से क्रोध बढ़ता जाता है, काम से काम बढ़ता जाता है। ये संसार में जो भी कुछ बढ़ता है वो करने से ही बढ़ता है। लेकिन जब मालूम हो जाए, एक बार मालूम हो जाए कि इसका अंत नहीं है, इसी को तो वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य हो गया, बस बहुत हो गया, खाना बहुत हो गया, दुनिया के पदार्थों को जानना अब इससे परे कौन है, इससे परे क्या है, और इसी को तो ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं। इसलिए श्रुति ने कहा तद विज्ञानार्थम गुरु में अभिगच्छे। अब आपको अपने को जानना है, दुनिया को नहीं जानना है। दुनिया को जानने की उपाय तो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये मन है, और ये हमारे पास तो पहले से ही है। अब अपने को जानना है, परमात्मा को जानना है, उसका उपाय क्या है? तो बोले तद विज्ञानार्थम गुरु में ये अभिगच्छे, गुरु की शरण में। और ये गुरु की शरण जाना ही आत्मोपलब्धि है। भगवान यहां का आत्मनो गुरु, आप बोलते ना आत्मनो गुरु, आत्मैव, भगवान ने कहा स्वयं अपने गुरु बनो। ये आत्मकृपा है, ये स्वयं मार्ग बने, हम स्वयं मार्ग बने। जो भी मार्ग बनता है वो स्वयं से बने, हम स्वयं मार्ग नहीं हैं। और जिस दिन हम जानना चाहते हैं, हमारे अंदर जानने की चाह निर्मित हो जाती है, उस दिन हम स्वयं मार्ग बन जाते हैं, परमात्मा को पाने का मार्ग बन जाते हैं। पहला मार्ग, परमात्मा को जानने का पहला कदम हम स्वयं बने, यही तो आत्मकृपा है। आप चाहते हैं कि नहीं? आप चाहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। सामने वाला कितना भी आपको बोले, लेकिन आप नहीं चाहते हैं। जब आप चाहते नहीं तो आप मार्ग कैसे बनेंगे? आपकी चाह ही तो मार्ग है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने बहुत कोशिश की है, हमारे शास्त्रों ने बहुत प्रेरणा दी कि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, आप स्वयं मार्ग बने उस साधना के। इसलिए भगवान ने सबसे महत्वपूर्ण पहले शब्द का प्रयोग किया, आत्मनो गुरु। बोले तुम खुद स्वयं गुरु बनो, स्वयं आत्मकृपा, स्वयं मार्ग बनो। आप लोग अक्सर श्रवण करते हैं, पांच प्रकार की कृपाएं हुआ करती हैं, उनमें पहली कृपा आत्मक कृपा है, दूसरी कृपा गुरु कृपा है, तीसरी कृपा शास्त्र कृपा है, और चौथी कृपा ईश्वर कृपा है। हम सोचते हैं ईश्वर की कृपा होगी तो सब होगा, जब हम सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा होगी तो सब होगा, गुरु की कृपा होगी तो सब होगा, ये कहीं ना कहीं हमारा आलस्य है, ये हमारी अकर्मण्यता है। गुरु की कृपा होने से, ईश्वर की कृपा होने से होता नहीं है। भगवान ने कहा अपनी अपने ऊपर कृपा होने से सारी कृपाएं हो जाती हैं। आपके ऊपर आपकी कृपा है, आत्मक कृपा, सबसे पहली कृपा आत्मक कृपा है, और आत्मक कृपा होने के बाद फिर सारी कृपाएं आ जाती हैं, फिर गुरु कृपा हो जाती है, फिर शास्त्र कृपा भी हो जाती है, फिर ईश्वर कृपा भी हो जाती है। लेकिन पहले आत्मकृपा तो हो। ये आत्मकृपा मने चाह, आत्मकृपा मने हम बनना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा तुम खुद बनो, आत्मनो गुरु आत्मैव। और एक गहरी बात भगवान ने बोली, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रेयोसा अनुविन्नते। जो बुद्धिमान आदमी है वो दूसरे से सीखता है, और जो बेवकूफ आदमी है ना वो अपने से सीखता है। सामने अग्नि है और आपको मालूम है कि उस अग्नि में हाथ डालने के बाद आपका हाथ जलेगा, किसी ने डाला है और उसका हाथ जला, आपको सीख लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उस अग्नि में हाथ डालकर सीख जाए कि ये अग्नि जलाती, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी व्यक्ति का पैर फिसला और वो व्यक्ति गिर गया, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए यहां बहुत बड़ी फिसलन है। आपको दूसरे के गिरने से सीख जाना चाहिए वहां पर फिसलन है। बुद्धिमान आदमी दूसरे की फिसलन से सीख लेता है कि वहां से गुजरना नहीं है, पर वहां से गुजरे भी तो सावधानी से गुजरना है। लेकिन बेवकूफ आदमी सीखता नहीं है, वो जब तक स्वयं नहीं गिरता है, और उससे भी परे और भी बुद्धि बेवकूफ लोग होते हैं जो गिरने के बाद भी नहीं सीखते हैं, वो गिरते जाते हैं लेकिन सीखते नहीं। भगवान ने कहा तुम स्वयं मार्ग बनो, आसपास की चीजों से सीखो। भगवान ने दो चीजें बताए, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, सीखने के दो मार्ग आपकी आंखों से दिखाई दे रही चीज प्रत्यक्ष, कानों से सुनाई दे रही चीज आप उसे सीख सकते हैं, और अनुमानों के द्वारा भी सीख सकते हैं। अंदाजा भी तो लगाता है आदमी, अंदाजा लगा लेता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको संसार में प्रवेश करने के बाद आप सीख ले, दुनिया को देखकर वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम बूढ़े होने के बाद बुढ़ापे को जान ले, बुढ़ापे के दुख को जान ले, दूसरे का बुढ़ापा देखकर हम जान सकते हैं बुढ़ापे में कितना कष्ट है। और भजन हमें यहीं से करना है, यहीं अभी इसी उम्र से करना है। हमें बहुत कुछ जानने का अवसर ये प्रकृति देती है। आप जानते हैं कोई किसी का नहीं है, ये क्या आपके ऊपर बीतने के बाद ही जानोगे? आपके आसपास के बहुत लोग हैं जानने के लिए। अंतिम समय जब आता है तो सारे दुख अपने को भोगने पड़ते हैं। आपके आसपास की कोई भी चीज कितने भी बड़ी मूल्यवान क्यों न हो, आपका रत्ती भर भी दुख वो स्वयं नहीं ले सकता है। आपका सिर दर्द कोई ले सकता है? आपका पेट दर्द कोई ले सकता है? कोई सिर पर हाथ रख सकता है? आप जब बोलते हैं ना कोई किसी का नहीं, बात सही है, ये वैराग्य के लिए है। इसलिए भगवान ने कहा अपनी आसपास की चीजों से तुम सीखो, और वैराग्य धारण करो। दुख दोषानुदर्शनम, तुम अपने दुखों को देखो और दूसरे के दुखों को भी देखो और वैराग्य धारण करो। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, बहुत सुंदर। भगवान यहां अपनी बात उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। आप जब अपनी बात कहते हैं तो उतनी मूल्यवान मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप कहते कि ये हमने अपने पिताजी से सुना तो वो बात बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है। आप जब बोलते कि ये बात हमने किसी साधु से सुनी तो आपको वो बहुत अच्छी लगने लगती है। इसलिए यहां पर भगवान कहते हैं कि मैं एक आपको इतिहास सुना देता हूं। एक राजा थे, उनका नाम था यदु, और प्राचीन समय में साधु महात्मा विचरण किया करते थे। साधु को विचरण करते रहना चाहिए, यहां से वहां, वहां से वहां। साधु को विचरण करने का स्वयं का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि साधु विचरण नहीं करेगा तो आपको तत्वबोध कैसे होगा, आपको मार्ग कैसे मिलेगा? गृहस्थ आश्रम के लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए परिव्राजक विरक्त साधु महात्मा विचरण किया करते हैं। अवधूत दत्तात्रेय अवधूत हैं, उनके जीवन में किसी चीज की आकांक्षा नहीं है, मान सम्मान की भावना नहीं है, भौतिक पदार्थों के संकलन की कोई मनोवृत्ति नहीं है, आत्मबोध में संतृप्त हैं। विचरण करते 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 महाराजा यदु के यहां गए। महाराजा यदु बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने आसन दिया, अपने आसन पर बिठा दिया, उनकी पूजा की। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, कुतो बुद्धिर्यम ब्रह्मन् न कर्तुः सुविशारदा यामासाद्य भवान् लोकम् विद्वांश्चरति बालवत्। इस प्रसंग से आपको मालूम पड़ता है आपके अंदर जिज्ञासा को पैदा करने के लिए अवसर चाहिए। आप जब ज्ञानी को देखते हैं तो आपको भी ज्ञान को पाने की जिज्ञासा अपने आप अंदर होने लगती है। किसी भक्त को देखते हैं तो आपको भक्त बनने की इच्छा हो जाती है, किसी योगी को देखने के बाद ही योगी बनने की इच्छा हो जाती है, और आश्चर्य की बात कि किसी चोर को देखने के बाद चोर बनने की इच्छा हो जाती है। कोई आदमी देख ले तो इस आदमी ने बेईमानी से करोड़ रुपए कमाए तो आदमी सोचता है कि काश मैं भी करता, और वो सोचने लगता है कि उसके तरीके क्या है। इसलिए आप बोलते ना संग, आप अच्छे लोगों के साथ जब रहते हैं तो अच्छे बनने की प्रेरणा हो जाती है। आप प्रेमी को देखेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा प्रेम क्या है, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा, पुस्तक से मालूम नहीं पड़ता है। आप ज्ञानी को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा ज्ञान क्या है। यहां देखा महाराजा यदु ने मस्ती देखी, अवधूत दत्तात्रेय की मस्ती देखी। परम पूज्य महाराजा श्री एक बार कहीं से गुजर रहे थे, मस्ती से आसपास कुछ बच्चे थे कॉलेज के, और वो देख करके मजाक कर रहे थे, देखो बोले बाबा कितना मस्त है, एक मोटा ताजा है, किस खेत का गेहूं खाता होगा। महाराज ने कहा कि बेटा हम मस्ती के खेत का गेहूं खाते हैं, हमारी ये मस्ती है। बोले अब कहां धावा बोल रहे हैं, बोले तुम्हारे घर। और बच्चों ने कहा बाबा, बोले अब कहां धावा बोल रहे हैं, बोले तुम्हारे घर पर, बोले तुम्हारे घर। आपके अंदर आनंद है, आपके अंदर संतोष है, आपके अंदर मस्ती है। वो मस्ती, वो आनंद, वो संतोष ये बाहर के पदार्थों का नहीं है। अरे अवधू दत्तात्रेय आत्मवित्त, आत्मरत, आत्मसंतुष्ट है। और वो आभा, वो प्रभा नारायण उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, उनके चलने फिरने में दिखाई दे रही है, उनके बोलने में मालूम पड़ रही है, नित्य तृप्त है। वासना आदमी को दुखी बना देती है, आदमी को निस्तेज बना देती है। आप जब याचना करते हैं तो उस समय आपके चेहरे पर तेज नहीं होता है, ये वासना याचना है, और उस समय आदमी को भिखारी बना देती है, वासना आदमी को भिखारी बना देती है। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन आपके मन में कोई वासना पैदा हो जाए, वैसे ही आप दरिद्री होना शुरू हो जाते हैं। आप राजा हैं लेकिन वासना पैदा होते ही आप भिखारी बनना शुरू हो जाते हैं। वो मांग की क्रिया में आदमी उतर जाता है, याचना माने मांग है। आप राजा हैं लेकिन आपकी याचना है। अवधु दत्तात्रेय में कोई वासना नहीं, निर्वसन है, और उनका अंतकरण सम्राट की तरह है, सम्राट की तरह। हमारे आश्रम में गोविंदानी जी महाराज रहते हैं, बहुत सुंदर बात बताते हैं सब, शायद ये बात स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी महाराज जी की होगी। एक कोई राजा था, उस राजा ने लिख दिया कि मेरे मरने के बाद सुबह के समय हाथी के सूंड में माला डाल देना और वो पूरे शहर में घुमा देना, जहां पर भी वो हाथी जिसके गले में माला डाल दे वो राजा हो जाए। राजा की नियुक्ति करने का उपाय बता दिया उन्होंने, वैसा ही हुआ। राजा के मरने के बाद राजा के सूंड में माला रख दी गई, और मंदिर के आसपास जब वो घुमाने लगे तो एक भिखारी के गले में माला डाल दिया हाथी ने। नवयुवक था भिखारी, राजा बन गया। अब राजा बना तो राजा की तरह रहने लगा हो, उसके आसपास के मंत्री लोग राजकाज चलाने लगे। एक कोई त्यौहार का समय था और राज परिवार के सदस्यों के साथ राजा मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। जैसे ही वो अपने हाथी के पालकी से राजा नीचे उतरे, राजा की दृष्टि पड़ी, वहां एक बहुत बड़े सेठ चना बांट रहे थे। बहुत सारे भिखारी ऐसे लाइन में लगे थे, सब चना ले रहे थे। मेरे को चीना जप्ती हो रही थी और राजा भूल गया कि मैं राजा हूं। वो भिखारीपन में चला गया, कहां सम्राट। और वो जो अंदर का भिखारीपन था वो बाहर आ गया, वो भूल गया, दौड़ता हुआ गया और वहां जाकर के छीना झपटी करते हुए वो कहने लगा, मेरे को चना, मेरे को चना, मेरे को चना। दौड़े मंत्री लोग और पकड़ के उन्होंने कहा, राजन आप भिखारी नहीं है, आप सम्राट हैं, आप चने के लिए हाथ आगे मत करो, हम तो सारी दुनिया को चना खिला सकते हैं। ओ उस समय याद आया, वापस आ गए। लेकिन अंदर सोच रहे थे, काश मिल गया होता एक मुट्ठी चना। ये जीवात्मा का स्वभाव है, ये आदमी का स्वभाव है। हम कितने भी ऊंचे, हम प्रतिष्ठित क्यों ना हो, हमारे मन का वो भिखारीपन कभी न कभी वो नीचे उतर आता है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। ये अनंत जन्मों का, ये जीव का स्वभाव है, वासना का स्वभाव, ये वासना का भिखारीपन है। ये वासना का भिखारीपन हमें जमीन पर उतार देता है। बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा में भी थोड़ी सावधानी हटी और उसी समय वो भिखारीपन हमारी क्रियाओं में उतर आता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये वासना आदमी को भिखारी बना देती है। सम्राट हैं लेकिन उनके अंदर भिखारीपन है, और जहां पर भिखारीपन है वहां संतोष नहीं, वहां आनंद नहीं। महाराजा यदु सम्राट हैं लेकिन वासना का भिखारीपन, इसलिए वहां पर संतोष नहीं, वहां दुख है, विषाद है। और उन्होंने अवधूत दत्तात्रेय को देखा, उनकी मस्ती देखी और वो सोचने लगे, मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, और इनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन शांति। आदमी सोचता है, आदमी के जीवन में एक चीज रह जाती है, अंत में एक चीज रह जाती है, और वो चीज है पछतावा। दुनिया में ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो आदमी अपने जीवन पर पछताता ना। आदमी सोचता है, काश हमने ये नहीं किया होता, काश हमने ये किया होता। ऐसा दुनिया में आदमी खोजना मुश्किल है जो अपने अतीत से संतुष्ट हो। आदमी सोचता है, ओहो हमने ये किया होता तो कितना अच्छा होता, ये नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता। ये दुनिया की रीत है। इस संसार में आप जहां तक जाए, आप जिसको पा लेते हैं वो चीज आपको उतना संतोष नहीं देती है, लेकिन जो चीज हम नहीं पाते हैं उसके प्रति आकर्षण हमारे मन में बना रहता है। यही तो असंतोष का कारण है। आप सुनते हो ना, दूर के ढोल सुहाने, जो आपको मिल जाता है वो अच्छा नहीं लगता है, जो आपको नहीं मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है, और वही तो असंतोष है। हमारे मन का सबसे बड़ा असंतोष वही है जो नहीं मिला। जो मिला वो संतोष नहीं देता, जो नहीं मिला वो असंतोष पैदा करता है, और वो असंतोष इतना पैदा करता है कि मिले हुए संतोष को समाप्त कर देता है। यही तो हमारी मूर्खता है, यही तो हमारी नासमझी है, यही तो हमारी अनाध्यात्मिकता है, यही तो हमारा अविवेक है। जो मिला वो संतोष नहीं, जो नहीं मिला वो बहुत बड़ा असंतोष है, और वो संतोष पर भारी है, वो संतोष को मिटाने वाला है। राजा के पास सब कुछ है, उससे संतोष नहीं है, लेकिन जो नहीं मिला उससे असंतोष है। और इतना असंतोष की संतोष मालूम ही नहीं पड़ता है, इसलिए वो सोच रहे थे मेरे पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं है। और इस महात्मा के पास, अवधु दत्तात्रेय के पास कुछ भी नहीं है, अवधूत है, वस्त्र भी नहीं है, उनके शरीर पर संभव है कौपीन भी न हो, और उसके बाद भी वो मस्ती में आनंद में है। इसलिए उन्होंने कहा, भगवान इसका रहस्य क्या है? अकर्तु हूं, आप अकर्ता है, आप कुछ करते भी नहीं है, और हम तो दिन भर करते रहते हैं। ये गणित है, आदमी का गणित है। आदमी सोचता है कि कुछ करने से संतोष मिलेगा, कुछ पाने से संतोष मिलेगा, कुछ खोने से संतोष मिलेगा। आदमी सोचता है कि ये चीज हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। आदमी सोचता है कि ये चीजें होने पर हम संतुष्ट हो जाएंगे। आदमी सोचता है कुछ करने से हम संतुष्ट होंगे, इसलिए आदमी दिन भर करने में लगा रहता है। आदमी दिन भर करने में लगा रहता है क्योंकि आदमी सोचता है कि करने से और आनंद का संबंध है। लेकिन आदमी इस गणित को समझ नहीं पाता है, करने और आनंद का कोई अंतर संबंध नहीं, आपके संतोष का और आनंद का कोई संबंध नहीं है, करने से कोई संबंध नहीं है। आप जिसको सुख कहते हैं वो संतोष नहीं है, सुख एक वृत्ति है, सुख एक संवेदना है, सुख संवेदनात्मक बोध है, वो संतोष नहीं है। आपने भोजन किया वो एक आनंद, वो एक आपकी मनोवृत्ति है। आपने जैसे रसगुल्ला मुख में रखा एक संवेदना प्रकट हो गई, अनुकूल संवेदना, और वो ऐन्द्रिक अनुकूल संवेदना को आप सुख कहते हैं। आपने कान से संगीत सुना वो एक अनुकूल संवेदना है, और वो ऐन्द्रिक है। आप दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े सुख अनुभव करते हैं वो सब ऐन्द्रिक हैं, वो इंद्रिय जन्य है। उसका अनुभव करने के लिए इंद्रिय चाहिए, लेकिन जिसको आप संतोष बोलते हैं वो अतीन्द्रिय बोध है। जिसको आप संतोष बोलते हैं, जिसको आप शांति बोलते हैं, वो ऐन्द्रिक नहीं है, वो अतीन्द्रिय अनुभव है। आपने छुआ, आपको मालूम पड़ा, बहुत अच्छा लगा, वो सुख है, वो ऐन्द्रिक है। इंद्रिय के बिना छूने का आनंद आदमी नहीं ले सकता है, आंख के बिना देखने का आनंद आदमी नहीं ले सकता है, कान के बिना आदमी सुनने का आनंद नहीं ले सकता है, रसनेन्द्रिय के बिना खाने का आनंद आदमी नहीं ले सकता है। ये पांचों इंद्रियां हमें अलग अलग सुख में ले जाती है, ऐन्द्रिक सुख में ले जाती है, और ये ऐन्द्रिक सुख एक ऊब है, ऐन्द्रिक सुख एक दुख है। हमारे शास्त्रों ने कहा जिसको आप सुख बोलते हैं वो सुख नहीं है, वो दुख का मूल है और दुख का पर्यवसान है। उसको पाने में दुख है और पाने के बाद भी दुख है। एक छोटे से वाक्य में ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में लिखा, भोजन सुख महाग पाकु करिता। भोजन का सुख बहुत महंगा है गिरीश भाई, बहुत महंगा है भोजन का सुख, बहुत महंगा है। यदि आपको जुटा के खाना हो आपको भोजन बना के खाना हो बहुत महंगा है, आप बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन करते हो, आनंद आता है, लेकिन आप बना के खाओ, दो दिन बनाना पड़े मधु बाबू, ज्यादा दिन नहीं, केवल दो दिन बनाना पड़े, वो बहुत महंगा है। ये दुनिया के जितने भी आनंद हैं बहुत महंगे हैं। अब आपके पास इतना बड़ा मकान है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, पति हैं, ये सारे सुख हैं, इन सुखों को पाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, आप क्या क्या नहीं करते, अनेकों कष्ट सहकर, अनेकों कष्टों को जुटाकर, उन कष्टों के ऊपर आप जो भी कुछ प्राप्त करते हैं वो बहुत छोटी चीज है। इसलिए ये सुख दुख के ऊपर खड़े हैं। और भगवान ने कहा परिणामे विषमी व, और ये जो सुख है ना हमें विषाद में भी ले जाते हैं, ये हमें दुख में भी ले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, ओहो बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो क्या हुआ, आप अटक गए, बहुत अच्छा लगा और वो चीज आपने चोरी कर ली, बहुत अच्छा लगा उसको पाने के लिए आपने और भी कुछ करने का प्रयत्न किया। इसलिए दुनिया के जितने भी ऐन्द्रिक सुख हैं उसके मूल में दुख हैं और उसके अंत में विषाद हैं, और इसमें ऊब भी हैं। आप बहुत ज्यादा ये ऐन्द्रिक सुख नहीं ले सकते हैं, आपको भोजन बहुत अच्छा लगता है, कितना खाओगे आप, कितना खाएंगे, दो रोटी खा लिया, आपको बहुत अच्छा लगा और सामने वाले ने कहा और खाओ और खाओ और खाओ और बस 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 मर जाऊंगा। एक बच्चा था उसको केला बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, तो हमने कहा मैं आज देखूंगा कि तुम कितने केले खाते हो, अरे बोले तुम्हारा सारा केला खा जाऊंगा, दो तीन दर्जन केले थे, अरे बोले सारा केला खा जाऊंगा, लेकिन खाऊं क्या, उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि भाई इतना केला उसको खिला सकता हूं। मैंने कहा खाओ, आंख बंद करके खाया, एक दर्जन केला खाया, पेट भर गया, डकार आ गया। मैंने कहा और, बोले बस, मैंने कहा नहीं और खाओ, रे बोले स्वामी जी मैं मर जाऊंगा। उसकी लिमिट कितनी है, ये ऐन्द्रिक सुख उसकी लिमिट है। आप कितना भी उत्तम भोग आप भोगो उसकी लिमिट है, उसके बाद आप भोग नहीं सकते। इसकी लिमिट अतिंद्रिय सुख उसकी लिमिट है, अतिंद्रिय सुख आपको ऊब में ले जाते हैं, ऊब में ले जाते हैं, ऊब में आप ऊब जाते हैं, बस 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 वैराग्य हो जाते हैं। ये ऊब माने वैराग्य है। आप भोजन के लिए बैठे हैं, बहुत भूखे हैं, आप पंगत लगी हुई, आपने देखा होगा पंगत में बहुत बड़े बड़े लोग पत्तल के लिए झगड़ा करते हैं, हां जगह के लिए झगड़ा करते, क्योंकि आपने देखा होगा, ओ बार बार बोलेगा भैया ये पत्तल मेरे को दो, पत्तल दोना मेरे को दो, मेरे को दो कटोरा, मेरे को दो गिलास, मेरे को दो। लेकिन आश्चर्य की बात, जब भोजन पूरा हो जाता है तो उस पत्तल को कोई पूछता नहीं है, उस दोने को कोई पूछता नहीं है, उस थाली को कोई पूछता नहीं है, और पहले उस थाली को आदमी छाती में लगा करके चलता हो। यही तो हमारे जीवन का सत्य है। हम संसार के प्रति ऐसे ही जीते हैं। ये भोग हमें वैराग्य में ले जाते, ऊब में ले जाते, ऊब में ले जाते, वो संतोष नहीं असंतोष है। इसलिए दुनिया में हम कितने भी भौतिक पदार्थों में जिए, वहां संतोष नहीं है, वहां आनंद नहीं है। और इसलिए पूछते भगवान अकर्तुफु सुविशारदा, आप अकर्ता है, आप कुछ करते नहीं है। राजा का गणित था, कुछ करने से आनंद मिलता होगा, कुछ करने से संतोष होता होगा, और इसलिए हम करते जाते हैं। लेकिन यहां कुछ भी करना नहीं फिर भी आनंद है, क्यों है? राजा का गणित फेल है। आज राजा का गणित फेल हो गया जब उन्होंने अवधू दत्तात्रेय को देखा, जब हम ज्ञानी को देखते हैं तो हमारे बहुत सारे भ्रम मिट जाते हैं। जब हम ज्ञानी को देखते हैं तो बहुत सारी हमारी समझदारी, बहुत सारी समझदारियां नासमझी मालूम पड़ती हैं। आदमी को मालूम पड़ता है कि हम जिसको समझदारी सोच रहे थे वो समझदारी नहीं थी, वो नासमझी थी। आज राजा का गणित गड़बड़ा गया और राजा ने पूछा, भगवान ये रहस्य क्या है? आज तक तो हम ये सोचते थे कि कुछ करने से शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, लेकिन ये तो उल्टा है। हम आज तक कुछ करते रहे, शांति नहीं मिली, और आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपके जीवन में परम शांति, इसका रहस्य क्या है? त्वम ही नह पृच्छताम ब्रह्मन् आत्मन्या आनंद कारणम ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवलात्मनः। अवधूत तत्र बड़े प्रसन्न हो गए, उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया है। भगवान उवाच, अवधूत दत्तात्रेय तो भगवान है ही, परम आनंद में स्थित महापुरुष केवल मानव मात्र का उद्धार करने के लिए राजाश्रय राजा के पास गए हैं, और राजा के अंदर उपस्थिति मात्र से ब्रह्म जिज्ञासा को उन्होंने निर्मित किया है। और जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछा और उसका उत्तर देने लगे, संति में गुरवो राजन बहवो बुद्धि उपाश्रिता यतो बुद्धि उपादाय मुक्तो अट्टा मिह ताक्षुणु। और दत्तात्रेय ने कहा कि राजन, ये मेरे में आनंद, मेरे में संतोष जो आपको मालूम पड़ रहा है, उसका कारण बाहर नहीं है, उसका कारण भीतर है। उसका कारण करना नहीं है, उसका कारण नैष्कर्म है। उसका कारण कर्म नहीं है, नैष्कर्म है। इसका कारण वासना नहीं है, इसका कारण निर्वसन है। ये दुनिया के सारे आनंद वासना जन्य है। आपको जो भी आनंद मिलता है वो वासना जन्य है। आपको खाने का आनंद मिला, वासना जन्य है। आपको छूने से आनंद मिला, वासना जन्य है। यदि आपकी वासना ना हो तो आपको आनंद नहीं आएगा। खाने की वासना ना हो तो खाने का आनंद नहीं मिलेगा। सुनने की इच्छा ना हो तो आपको सुनने का आनंद नहीं मिलेगा, वो मजबूरी मालूम पड़े। और दत्तात्रेय ने कहा कि राजन, वो आनंद वासना का नहीं है, ये निर्वसनता का आनंद है, और वो अंदर से है, भीतर से है। दो प्रकार के गुरु हुआ करते हैं, एक शिक्षा गुरु और दूसरे दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक होते हैं, साधना के लिए एक गुरु चाहिए, साधना के लिए एक मंत्र चाहिए, साधना के लिए एक सिद्धांत चाहिए, साधना के लिए एक इष्ट चाहिए। साधना का अर्थ यही है, एक मंत्र, एक सिद्धांत, एक इष्ट और एक मार्गदर्शिता। आप जब चलते हैं तो उसमें एक निष्ठा हुआ करती है। आप चलते चले, चलते चले, चलते चले, आपका उद्देश्य एक, चलने का उद्देश्य एक। यदि आपके चलने का उद्देश्य एक ना हो तो आप कहीं जाओगे ही नहीं। आप अपने घर से निकले हैं प्रेमपुरी आश्रम आने के लिए, आप पहुंच जाओगे, लेकिन आपने उद्देश्य नहीं बनाया। दस कदम चले वापस आ गए, दस कदम सोचा कि चलो प्रेमपुरी, और उसके बाद आपका मन बदला, नहीं नहीं प्रेमपुरी नहीं चलेंगे, हम बाबुलनाथ जी चले, और बाबूलाल जी के तरफ जाने लगे, और उसके बीच में इच्छा पैदा हुई, नहीं नहीं हम चौपाटी जाएंगे, फिर दूसरी इच्छा पैदा हुई, नहीं नहीं हम चर्च गेट जाएंगे। ओहो नहीं, कहां जाओगे आप? अब आपके चलने का एक उद्देश्य ना हो तो आपका चलना आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। इसलिए एक उद्देश्य होना चाहिए, एक उद्देश्य, और इस एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सिद्धांत चाहिए, एक मंत्र, अक्सर ऐसा होता है आदमी एक मंत्र नहीं रखता, कुछ भी जपता है उसमें निष्ठा नहीं बनती है। मैंने आपको कल भी बताया था, आप एक बार कुर्सी पर बैठ जाते हो ना, वो कुर्सी प्यारी लगने लगती है, वो आपकी हो जाती है। आश्चर्य, आप जिस कुर्सी पर एक बार बैठते हैं वो दूसरे दिन वो कुर्सी आपकी हो जाती है, यही तो रहस्य है। और यदि आप लगातार उस कुर्सी पर बैठते जाओगे तो वो आपको सचमुच मालूम पड़ने लगती है, मेरी है। उस कुर्सी के साथ आपकी निष्ठा हो जाती है, आपके मन में एकाग्रता आ जाती है, और जब वहां बैठोगे तभी आपको प्रवचन सुनने में आनंद आता है, नहीं तो आनंद नहीं आता है। ऐसे ही है, एक मंत्र है, एक गुरु है, एक सिद्धांत है, तो आपकी निष्ठा बन जाती है, उसके प्रति आपका मन जुड़ जाता है, आपकी साधना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको कहा जाता है एक जगह होना चाहिए बैठकर जप करने के लिए, ऐसा बोलते हैं, एक समय एक स्थान। ये तो अक्सर क्या होता है, आप बहुत बहुत सारी चीजें सुनते जाते हैं। अभी यहां प्रेमपुरी का एक सौभाग्य है, ये वेदांत का पीठ है, ये वैदिक विद्यापीठ है, आप यहां भगवद गीता श्रवण करते हैं, यहां पर ब्रह्मसूत्र श्रवण करते हैं, भागवत का श्रवण करते, अनेकों ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा वैदिक शास्त्रों का श्रवण करते हैं, आपको एक सिद्धांत मिलता है, एक सिद्धांत आपके अंतकरण में एक निष्ठा को निर्मित किया जाता है। ऐसा नहीं अलग 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 अलग, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक शास्त्र, एक सिद्धांत, एक मंत्र, एक शास्त्र। अब तो दत्तात्रेय ने कहा कि दो प्रकार के गुरु हैं, एक दीक्षा गुरु हैं, दूसरे शिक्षा गुरु। बोले मेरे 24 हैं, शिक्षा गुरु 24 हैं। शिक्षा गुरु आप कितने भी बना सकते हो, आप जितने लोगों से सीखोगे वो आपका गुरु है। पहले तो आपके माता पिता गुरु हैं, आपके माता पिता ने आपको बहुत कुछ सिखाया, मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा। आपको मालूम ही नहीं पड़ा मां ने आपको कब मातृभाषा दी, अपनी भाषा दी थी, वो बहुत बड़े गुरु हैं। पिता बहुत बड़े गुरु हैं, आपके आसपास के लोगों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आप थोड़े बड़े हो गए, आपको आपके शिक्षकों ने सिखाया, वो भी आपके गुरु हैं। बड़े होने के बाद आप बहुत सारे लोगों से सीख लेते हैं, बहुत सारे साधु महात्माओं के द्वारा आप ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वो आपके गुरु हैं। लेकिन यहां अवधूत दत्तात्रेय ने जो गुरु के रूप में स्वीकार किया वो बहुत मजेदार लोग हैं, यहां बहुत मजेदार लोग हैं। शिक्षा आपको लेना होना तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, और आपको सीख नहीं लेना है तो आप किसी से भी नहीं ले सकते हैं। यहां बहुत मजेदार गुरु हैं, आप सुनेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। संति में गुरवो राजन बहवो बुद्धि उपाश्रिता यतो बुद्धि उपादाय मुक्तो अट्टामिह तां श्रृणु। सबसे पहला देखो गुरु बोलते हैं, पृथ्वी, वायु, आकाश, आपः, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोतः, अजगरः, सिंधुः, पतंगः, मधुकृत, गजः, मधुहा, हरिणो, मीनः, पिंगला, कुररो, अर्भकः, कुमारी, शरकृत, सर्पः, उर्णनाभी, सुपेशकृत, एते मे गुरवो राजन। ये अवधू दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं। इनमें जो पहला जो गुरु है ना, वो जड़ है, चेतन नहीं है। पृथ्वी उनका पहला गुरु है, और ये चेतन नहीं है, ये जड़ है, और वो जड़ से ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। पृथ्वी तत्व से ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। जब उन्होंने पृथ्वी तत्व को देखा, आदमी के अंदर जब ग्रहणशीलता हो, आदमी के अंदर ग्रहण करने की शक्ति हो, तो आदमी कहीं से भी ग्रहण करता है। उन्होंने पृथ्वी को देखा, पृथ्वी के धैर्य को देखा, पृथ्वी की क्रियाशीलता को देखा, और उन्होंने पृथ्वी से धैर्य और क्षमा की शिक्षा ग्रहण की।
पृथ्वी की क्रियाशीलता की शिक्षा ग्रहण की। पृथ्वी में धैर्य, धैर्य माने धीरता है, धर्म है। पृथ्वी में धैर्य है, पृथ्वी के अंदर धर्म है, धारण करती है वो, सबको धारण करती है। इस पृथ्वी के ऊपर अच्छे बुरे सबको धारण करती है पृथ्वी, जीवन प्रदान करती है, ये तो धर्म है जो धारण करना। आप हजारों लाखों करोड़ों लोग इसके ऊपर निवास करते हैं और इसके अंदर कैसी क्षमा है। उन्होंने देखा इस पृथ्वी को थूकते भी है तो पृथ्वी कुछ बोलती है क्या? ओहो क्या क्षमा है हा? आप इसके ऊपर गंदगी करते हो तो भी इसको धारण करते हैं, ये शिक्षा लेने का तरीका है, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा इसमें। लेकिन उन्होंने देखा ये क्षमा, ये धैर्य और इसकी क्रियाशीलता, ये पृथ्वी रुकती नहीं है, ये सूर्य की परिक्रमा करते, निरंतर सूर्य की परिक्रमा करते। अभी हम लोग कामता नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए गए थे, 5 किलोमीटर है और वह दंडवती परिक्रमा करके आए। दंडवती परिक्रमा आप लोगों ने गिरिराज की परिक्रमा की होगी, वृंदावन में वृंदावन की परिक्रमा की होगी, हम सब लोग सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, 24 घंटे में वो खुद की परिक्रमा करती है और 365 दिनों में वो सूर्य की परिक्रमा करती, एक परिक्रमा करती है, स्वयं घूमती हुई वो सूर्य की परिक्रमा करती, निरंतर ये परिक्रमा में है। और इस पृथ्वी के ऊपर हम लोग भी बैठे हैं, हम भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। मधु बाबू जी आपने कितनी परिक्रमा की आपने भी सूर्य की परिक्रमा की है हमारे साथ, हम सब लोग कर रहे हैं सूर्य की परिक्रमा। और ये कितना सौभाग्य की परिक्रमा करते करते सत्संग भी हो रहा है, सूर्य की हम परिक्रमा भी कर रहे हैं और हम सत्संग भी कर रहे हैं और वो निरंतर है, निरंतर। ये पृथ्वी कभी बोलती है क्या भैया बस बस थक गए अब हम थक गए? नहीं, नहीं, निरंतर। इसकी निरंतर क्रियाशीलता ये बहुत बड़ी प्रेरणा है, हम लोगों को प्रेरणा है। ये निरंतर क्रियाशीलता को देख करके उन्होंने पुरुषार्थ की प्रेरणा ली, अवधूत दत्तात्रेय ने निरंतर पुरुषार्थ करने की प्रेरणा ली। जैसे ये पृथ्वी निरंतर श्रम कर रही है, ये निरंतर पुरुषार्थ कर रही है, वैसे ही हमको निरंतर श्रम करना चाहिए, निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे कर्म हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, कर्म ही जीवन का निर्माण करते हैं। और ये प्रेरणा नारायण उन्होंने पृथ्वी तत्व से ली, पृथ्वी से। और दूसरा तत्व, दूसरा गुरु है वायु, ये बड़े मजेदार तत्व हैं। ये जो वायु तत्व है ना, असंगता, उन्होंने देखा वायु तो बहती जाती है कि अटकती नहीं है। आपने कभी देखा क्या कि बहुत सुंदर बगीचा मिला, बड़े सुंदर सुंदर फूल, बड़ी सुगंध और वायु वहां से बही और रुक गई? नहीं नहीं, अरे वहां कितना भी सुंदर बगीचा, कितनी भी सुंदर सुगंध हो, लेकिन वायु वहां अटकती नहीं है, वो बह जाती है। और दुर्गंध आती है तब भी वो बह जाती है। उन्होंने देखा ये कितनी सुंदर बात है कि वहां कितना भी आकर्षण हो, वहां अटकना नहीं है, वहां भटकना नहीं है, निरंतर चलते चलो। ये वायु से उन्होंने असंगता की शिक्षा ग्रहण की। मान लो कि कोई भगत आपको मिला और बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाया, बहुत बढ़िया बढ़िया, और उन्हें ऊपर से दक्षिणा भी दी, और साधु ने सोचा कि भगत अब तो हम यहीं रह गए, रुक जाए क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत सेवा हुई, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन मिला, स्वागत सत्कार हुआ,
लेकिन साधु को वहां पर रुकना नहीं है, असंगता। हमारी आंखों से कोई चीज दिखाई दे लेकिन असंगता, कानून से बहुत सुंदर चीज सुनाई दे लेकिन असंगता, वहां अटकना नहीं है। खाने की बहुत सुंदर सुंदर चीजें मिली और वहां पर आसक्त नहीं होना है। इंद्रियों से बहुत आनंद मिला लेकिन इंद्रियों में अटकना नहीं है, इंद्रियों के विषय में अटकना नहीं है, ये असंगता है। ये बाहर के पदार्थ हमें अटकाते नहीं, हमारी आसक्ति अटका देती है। इसलिए वायु तत्व से उन्होंने असंगता की शिक्षा ग्रहण की। नारायण, बड़ा सुंदर प्रसंग है, शेष विषय कल करेंगे। आप सीधे बैठ जाएं, दो मिनट के लिए जप करेंगे।